भागवत का श्लोक है हरि नाम के योगेश्वर ने, नव योगेश्वरों की कथा में हरि नाम के योगेश्वर ने उच्चारण किया, वो श्लोक है।
सर्वभूतेषु यः पश्येत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः येष भागवतोत्तमः।
सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः। जो समस्त प्राणियों में आत्म रूप से भगवत सत्ता को ही देखता है और समस्त प्राणियों को आत्म स्वरूप भगवान में ही देखता है, वह उत्तम भक्त है। हरि योगेश्वर कहते हैं उत्तम भक्त के ये लक्षण हैं कि जो सब में समस्त प्राणियों में आत्म रूप से भगवान को देखता है, अपने रूप से भगवान में, आत्मा मना अपने मैं के रूप में, जिस सत्ता से मैं स्फुरित होती है इस तन में, उसी सत्ता से और तनों में मैं स्फुरित होती है, जिस सत्ता से ये आंखें देखती है उस सत्ता से सब अन्य की आंखें देखती है। तो सब आकृतियां भिन्न भिन्न दिखती है लेकिन आकृतियों के पीछे निराकार मेरा भगवत तत्व एक है और सब वो भगवत तत्व में है। जैसे आकाश में सब हैं और सबके भीतर आकाश है, ऐसे ही मेरा परमात्मा अथवा मैं सब में हूं और सब मुझ में है। इस प्रकार का जिसका ज्ञान है वो उत्तम भक्त है, भक्तों में शिरोमणि है और ज्ञानियों में मूर्धन्य, योगियों का सिरताज है और कर्मियों का फलदाता तत्व में विश्रांति पाया हुआ सम्राट है, वो उत्तम भक्त है, उत्तम ज्ञानी, ज्ञानियों में शिरोमणि है, दुनिया के तमाम ज्ञान जिसके पास है उससे भी वो श्रेष्ठ ज्ञानी है जो सब में मुझको और मुझ में सबको, सब में अपने को और अपने में सबको देखता है। वो दुनिया के हर इज्जत वाले से ऊंची इज्जत वाला, हर दुनिया के विषय के ज्ञान वाले से ऊंचा ज्ञान वाला माना जाता है। दुनियादारी के ज्ञान होते हैं साइकोलॉजिकल ज्ञान, थ्योरिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, बायोलॉजी ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान, सर्जरी का ज्ञान, ये सब एक एक विषय के ज्ञान है लेकिन एक एक विषय का ज्ञान रखने वाला भी उस विषय में पूर्ण दावा नहीं कर सकता कि ये पूरा हो गया। कान का स्पेशलिस्ट कान की खबर देते हुए भी ये दावा नहीं कर सकता कि कान के विषय का ज्ञान पूरा हो गया अभी और है। मस्तिष्क के विषय का ज्ञान रखने वाला भी उसमें पूर्ण नहीं हुआ। एक स्पेशलिस्ट हो चाहे, एक ही विषय का स्पेशलिस्ट हो हजारों आदमी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ अपूर्णता रह जाती। लेकिन जहां से सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं उस आत्मा का जिसको ज्ञान है वो सब ज्ञानवानों का सिरताज है, सब इज्जतों वालों का मूर्धन्य शिखर पर बैठा है। ऐसा भक्त ज्ञानी उत्तम है। दूसरे होते मध्यम भक्त, जो भगवान को उत्तम मानते हैं, भगवान के प्यारों को मध्यम मानते हैं और संसारियों को कनिष्ठ मानते हैं, वो मध्यम भक्त है। पापियों को और भक्तों की मजाक उड़ाने वाले को महापापी मानते हैं। लेकिन जो ब्रह्मवेता है वो तो चंडाल को, हाथी को, गाय को, सब को निहारते हुए, बाहर से सब भिन्न भिन्न निहारते हुए भी अभिन्नता का दर्शन करता है। आजकल के राज्य व्यवस्था के अनुसार ये अभिन्न दृष्टि करना बड़ा कठिन हो रहा है साधकों को, भक्तों को, समाज को, क्योंकि अब ये बहुमति पे काम चलता है और बहुमति हमेशा कम समझदारों की होती है। जयराम जी की, तो कम समझदारों को अच्छा लगे ऐसा व्यवहार करके, बोल चाल के वोट लेने पड़ते हैं। और फिर कुर्सी संभालने के लिए भी ओछी मती के लोगों की खुशामत करते हुए चलना पड़ता है। अच्छा, तो प्रजा को भी इस विषय में माधव तीर्थ ने कहा कि प्रजा को भी इस विषय में राग और द्वेष, लड़ाई और झगड़े के लिए तैयार रहना पड़ता है। गांवों गांवों में, राज्यों राज्यों में, देशों देशों में, मेरे तेरे राग द्वेष में प्रजा को अपनी अद्वैत ज्ञान निष्ठा टिकाना, जमाना, जागृत करना कठिन हो जाती। हम लोगों को बड़े में बड़ी हानि यह होती है कि हम भूतकाल में भय भविष्य का होता है और विषाद भूतकाल का होता है। पैर पीछे फिसल गया तो भूतकाल है और पैर आगे फिसल गया और हम गिर गए तो भविष्यकाल, और पैर दलदल में फिसल गया तो भय, शोक और चिंता, दलदल में गए तो चिंतित हो गए। हमारी जो मूल चेतना है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो अखूट ज्ञान का स्रोत है, सुख का स्रोत है, सुख का खजाना है, मुक्ति का स्वरूप, मुक्त स्वरूप है जो हमारा, उसका हम अनुभव नहीं करते, उसमें ये तीन बातें हैं, भय, शोक और चिंता। पैर आगे गिर गया तो आगे फिसल गया इसको भविष्य बोलते, पीछे फिसल गया इसको भूत बोलते हैं, और जहां खड़े वहीं कीचड़ में गिर गए को वर्तमान, जहां है वहां ठीक से देखने की कला आ जाए वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। आप जहां हैं वहां आपको ठीक देखने की कला आ जाए तो आप भगवान के अत्यंत प्यारे में प्यारे भक्त हो जाते। तो एक उत्तम भक्त होता है, दूसरा मध्यम भक्त होता है। भगवान को उत्तम मानता है जहां को मध्यम मानता है भगवान के प्यारों को, और संसारियों को कनिष्ठ मानता है, और भगवान और भगवान के विरोधियों को महापापी मानता है, ये मध्यम भक्त। तीसरे होते अधम लोग। अधम लोग क्या होते हैं, ये एक नाथ जी महाराज की भाषा में, ये अधम लोग वे होते हैं कि जड़ पाषाण की मूर्ति या मंदिर मस्जिद में भगवत भाव करते हैं, लेकिन भगवत भाव संपन्न भगवान के भक्तों को, संतों को नहीं सुनते, नहीं समझते, और मूर्ति की पूजा मंदिर मस्जिद के लेफ्ट राइट करते रहते हैं, इन किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी की चुगली, किसी की चाड़ी खाते हुए जीवन बिता देते हैं और अपने को भगत मानते हैं, वो कनिष्ठ भक्त हैं। जय जय। और चौथे होते फोर्थ क्लास, कनिष्ठ से भी गए बीते, वो जिस इलाके के, जिस विचार के लोग हैं उस इलाके में उस विचारधारा को मानने वाले भगवान को धरकर अपना काम पठा ले। चलो चाहे शक्ति के उपासक लोग हैं तो दुकान पे शक्ति का फोटो लगा दिया अथवा शक्ति का मंदिर बना दिया, शिव के उपासक है तो शिव जी का मंदिर बना दिया और दुकानदारी चालू कर दी, और सब प्रकार के लोग आने वाले हैं, तीर्थ का स्थान है तो सब प्रकार की मूर्तियां 500 की 200 की धर दी, 8 लाख 2 लाख रुपया खर्च कर लिया चंदा करके और 10-5 कमरे बना लिया, और ये ठाकुर जी, ये जगदम्बा, ये रामा अवतार, ये नानक जी, ये कबीर जी, ये फलाना, ये फलाना, ये फलानी देवता है, ये मनसा देवी है, ये फलाना देवता है, ये बुड्ढे हनुमान है, ये जवान हनुमान है, ऐसा सब तैयार करके जो भगवान के नाम से कमाई करके और ऐश करता है वो फोर्थ क्लास मनुष्य जन्म में मृग है। उसके जीवन में धर्म कर्म नहीं, लेकिन धर्म कर्म को मानने वाले लोगों का शोषण करने की कला है उसमें, जयराम जी की। और ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे, लेकिन यहां हरि योगेश्वर कहते हैं सर्वभूतेषु यद पश्चित, सर्वभूत में वो जो परमात्मा को देखता है, तो ऐसी दृष्टि तब होती है जब हम आगे न गिरे, पीछे न गिरे और बीच में कादों में न गिरे, हम ठीक स्टैंड पे हो, ठीक प्लेटफॉर्म पे हो। हमका मतलब शरीर नहीं, हमका मतलब मैं जहां से उत्पन्न होती है वो अपनी मैं ठीक समझदारी की। जगत में धन इतनी सुरक्षा नहीं कर सकता, सत्ता सुरक्षा नहीं कर सकती, मित्र कुटुंबी सुरक्षा इतनी नहीं कर सकते जितनी सुरक्षा तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी कर सकता है। जय जय, ज्ञान से बढ़कर तुम्हारा कोई निकटवर्ती मित्र नहीं, शाश्वत मित्र नहीं ज्ञान से बढ़कर। और बाहर के मित्र भी अगर तुम में ज्ञान होगा तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकेंगे। जयराम जी, इसीलिए जिसने ज्ञान का आदर किया उसने अपने जीवन का आदर किया, और जिसने ज्ञान का अनादर किया उसने अपना सर्वनाश किया। इसलिए गीताकार ने कहा यस्य ज्ञानमयम तपः, तप कौन सा के ज्ञान संयुक्त तप। अब चलो अपने घर में आए, नारायण नारायण नारायण। पीछे फिसले तो भूत, भूत बुरा होता है कि इसको भूत लगा है, जिसको भूत लगा है वो सुख से कैसे सोएगा, जिसको भूत लगा है वो चैन की नींद कैसे लेगा और सही बात कैसे बोलेगा। एक सज्जन भोजन कर रहे, थाली पिरोसी गई और उसकी आंखों से टप 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 गंगा यमुना चालू हो गई। पूछा कि भाई इतना सुंदर प्रसाद का थाल धर दिया है और आंखों से टप टप आंसू बरस रहे, क्या बात है। बोले बाबा जी क्या बताएं, 13 साल पहले की बात मुझे याद आ गई, मेरी पत्नी ऐसी ही पूरियां बनाती थी और कढ़ी भी ऐसी बनाती थी, मीठा लिमड़ा छोड़ती थी, आज आश्रम में मीठा लिमड़ा वाली कढ़ी देखकर मुझे अपनी पत्नी याद आती। अरे बुद्धू शिरोमणि, तू अभी का आनंद ले वर्तमान का, लेकिन 13 साल पीछे तू भूत में चला गया, तो भूतकाल का सुख याद करके वर्तमान में दलदल में गिर जाते हैं। भूतकाल का किसी ने दुख या अपमान दिया उसको याद करके भी हम वर्तमान से फिसल जाते पीछे की ओर। ऐसे कई निमित्त होते हैं, पत्नी पुत्र परिवार सेठपना, किसी की गाड़ी मोटर के अपने पास भी थी लेकिन अब दिल नहीं, किसी को हवाई जहाज से उतरते हुए कहा कि हम भी कभी हवाई जहाजों में घूमे थे लेकिन अब तो साइकिल भी भाड़े की भागे, लेकिन अभी तो अपने स्टैंड पर रहे यार, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा क्यों करे, कब तक करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति समाज में, देश में, विश्व में, ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ कि जिसकी बाह्य परिस्थितियां सदा एक जैसी हो, चाहे फिर वो हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, देसी हो, परदेसी हो, अपना वाला हो, खुदा वाला हो, भैया वाला हो कि तैया वाला हो, हमची मुंबई वाला हो, चाहे तुमची गुजरात वाला हो, चाहे कोई हो, लेकिन सब दिन एक जैसे किसी के नहीं हुए। मनुष्य हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकिनी हो, साकिनी हो, सब दिन किसी के एक जैसे नहीं होते। कल सुनाई थी कथा बलि राजा की, इंद्र को कहा कि इंद्र तू गर्व से भरा जा रहा है, वो दिन भूल गया कि तुम घूम रहा था और मैं राज्य कर रहा था, अब मेरा राज्य चला गया तो कोई बात नहीं, मैं एकांत में उजाड़ देश में गधे का रूप धारण करके वो एकांत में तप कर रहा हूं, अनुसंधान कर रहा हूं अपने विचारों का, ख्यालों का, और ख्यालों से पार होकर परम तत्व में स्थिर होने को कोशिश करता हूं जो अचल है। चल राज्य संपत्ति तो मैंने भोगी, त्रिभुवन में मेरा राज्य था, लेकिन ये काल चक्र है, कभी राजा को भिखारी बना देता है, कभी भिखारी को राजा बना देता है। तुमने नहीं देखा कि जो जेल में थे, जिसने कष्ट सहा है, और ऐसा भी है जो कष्ट सहता है बुद्धिपूर्वक, समझ पूर्वक कष्ट सहता है और वर्तमान में टिकता है, जेल में होते हुए भी फिर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपिता बन जाते, गांधी जी, जयराम जी के, तो और भी कई। तो जो समझदारी से विघ्नों को, दुखों को सह लेते हैं, पचा लेते हैं, उनका हो जाता है तप, और जो ना समझी से भोग में गिर जाते हैं उनका हो जाता है तपनाश। लेकिन जो भोग में नहीं गिरे और भोग की इच्छा नहीं करें, अंतःकरण को निर्मल और शांत रखें, तो वो भोग और योग दोनों से पार होकर मुक्ति का अनुभव करते हैं। किसको बहुत जन्म लेने हैं और किसको छुटकारा पाना है, ये भी आप जानना चाहे तो जान सकते हैं, अपनी स्थिति जानना चाहे तो जान सकते हैं। बुद्ध ने 10 नियम बनाए, उसमें कहा कि कामी व्यक्ति की चाल से पता चल सकता है, लोभी व्यक्ति की चाल से पता चल सकता है, अहंकार व्यक्ति की चाल से पता चल सकता है, चिंतित व्यक्ति के चेहरे से पता चल सकता है। आप गिरे तो पहाड़ पर, लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी ने अपमान कर दिया और आप उसको पीट कर आए, अब घर में आए तो आप खिन्न होंगे, रोबीले होंगे, और कहीं डांट सह के और पिटाई नहीं करके आए, दब के आए, तो घर में आप आएंगे तो चिड़िए होके आएंगे। तो जो अगले जन्म में नरकों से आया है, दुखों से आया है, वो इस जन्म में चिड़िया स्वभाव का होगा, जयराम जी की। जो किसी से लड़ झगड़ के आया वो तुमसे भी मिलेगा तो उसमें अभी खिन्नता होगी, लेकिन जो ध्यान समाधि करके आया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणिश्यति, ऐसे श्लोक का गीता माता का अमृत पीकर आया है। गीता को मां कहा, मां जैसे बेटे का गुण दोष नहीं देखती, उसको छाती से लगा देती, उसे वात्सल्य प्रेम से नहला देती है, कृपा पूर्ण आंखों से उसे पावन कर देती है, और स्नेह भरे हृदय से उसके चित्त में आश्वासन भर देती है। मां का जैसा स्वभाव है तो अर्जुन रूपी पुत्र शोकातुर है और गीता रूपी मां उसको गले लगा दे। तो गीता के वचन को कोई ध्यानस्थ योगी अपने अंतःकरण को गीता के विचार में, भागवत के विचार में, ब्रह्म विद्या के विचार में, गुरु दत्त ज्ञान के विचार में, गुरु दत्त मंत्र के विचार में, अपने चित्त को जो पावन करके आया है उसको तुम मिलोगे, देखोगे, तो उसको देखते ही, मिलते ही तुमको लगेगा कि लड़के झगड़ के नहीं आया, लेकिन खुदाई सुरा पीकर आया है। जय राम जी की, राम नाम की मस्ती पी के आए हैं, मस्तों के साथ मिलकर मस्ताना हो रहा हूं, शाहों के साथ मिलकर शाहाना हो रहा हूं। तो कोई आदमी ठोकर तो खाई पहाड़ पे और आ गया घर में लड़ने कील से, ठेस लगी बाजार में और मुक्का मारा पत्नी को, तो ऐसे खिन्न मानस होते। एक शराबी था, शाम होते ही बस वो दारू के पीठे में पहुंच जाता था, भर पेट पीता और फिर लथड़ता लथड़ता। एक दिन उसने शराब पी और लालटेन लेकर चला चला चला, लालटेन उठा उठा के चारों तरफ देखे कि घर नहीं आया, घर नहीं आया। लालटेन फेंक दिया बाहर और घर के अंदर घुस गया। लालटेन को भरपेट गालियां दी कि प्रकाश नहीं करता, बताता नहीं, तेरे को उठा उठा के चला। लालटेन को खूब गालियां दे मारी और अपने कोठरी में सो गया। सुबह उठा, देखा कि वो शराब के अड्डे वाला नौकर लालटेन हाथ में लिए आ रहा है, मेरा लालटेन। पूछा कि मेरा लालटेन उसके हाथ में कैसे वो ले आ रहा है। नजीक आया, उसने कहा कि साहब लीजिए अपना लालटेन, आप अपना लालटेन इधर भूल गए थे और हमारा तोते का पिंजरा खाली पड़ा था, वो उठा कर ले आए। लालटेन तो भूल गए और तोते का पिंजरा लेके आए। तब उस साहब को पता चला कि मैंने क्या किया था, वर्तमान के दलदल में गिर गया था, पढ़ाई लिखाई सब खाक हो गई थी। उसने तो महाराज तोते का पिंजरा खाली उठाया था, लेकिन यहां मन रूपी तोते का पिंजरा हम 2400 घंटे उठाए हुए वर्तमान के दलदल में गिरे जा रहे हैं। पिंजरा प्रकाश कैसे करेगा? प्रकाश लेना है तो लालटेन चाहिए, लालटेन के बदले पिंजरा नहीं काम देगा। ऐसे ही प्रकाश चाहिए तो अंतर्दृष्टि का प्रकाश चाहिए, अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर ज्योत एवच। अंदर का आराम चाहिए, अंदर का सुख चाहिए, अंदर की ज्योत चाहिए। अगर अंदर की ज्योत, अंदर का आराम, अंदर का सुख के रास्ते पर आदमी नहीं है तो समझ लो कि उसके भाग्य में खूब दुख लिखे हैं, खूब शीशासन लिखे हैं और खूब माताओं के गर्भ में शीशासन करने का उसका तैयारी करनी पड़ेगी उसको। दूसरा, अपने को मापना हो कि हमारे अब दूसरे जन्म होंगे कि नहीं होंगे, बहुत जन्म होंगे कि अब छुटकारा हो जाएगा, उसका माप निकालना हो तो निकाल सकते हैं। वासना पूर्ति से, भोग भोगने से सुख होता है कि वासना निवृत्ति से सुख होता है? काम से सुख होता है कि राम से सुख मिलता है? अगर काम से सुख का एहसास आ रहा है, काम उपभोग से, तो समझ लो कि अभी दुर्भाग्य चालू रहेगा, जन्म मरण चालू रहेगा। और काम उपभोग पूर्ति से सुख नहीं, लेकिन काम उपभोग की निवृत्ति से सुख आ रहा है, तो समझ लो कि मोक्ष के मार्ग पे गाड़ी चल रही है। जितना जितना कामना पूर्ति से सुख लेगा, उतना उतना उसके संस्कार ओछे होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। और जितना जितना कामना निवृत्ति करता जाएगा, उतने उतने उसकी बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, प्रसन्नता, ज्ञान, अंदर का चिराग प्रकट होता जाएगा। रिद्धि सिद्धि किसको बोलते हैं? सिद्धि किसको बोलते हैं? सहन करने से सिद्धि आती। जो वस्तुओं के अभाव में जीने लगता है, निर्धनता में जीने लगता है और फिर भी शांत रहता है, सहता है, तो उसके आगे धन मंडारने लगता है। जो भूख में भी संतुष्ट होने लगता है, उसको अन्न की सिद्धि होने लगती है। और जो निर्धनता में भी स्थिर होने लगता है, उसको धन की सिद्धि आती है। जय जय। निर्धनता में भी कूड़ कपट ईर्ष्या बेईमानी नहीं करता, उसको धन की सिद्धि। अब महाराज, जो पूर्व आग्रह से रहित, चिंता भय शोक से रहित अंतःकरण वाला होता है, तो वह अंतःकरण उसका साफ आईना बन जाता है। दूर दूर तक आकाश में महापुरुष सिद्धों के फैले हुए विचार उसके द्वारा प्रकट होने लगते हैं। ये भी सिद्धि है। बाप जी बढ़िया कहीं ना थी अने बोले से वो तो क्या, हा 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 हा, धन्य छे कबीर साहेब, धन्य छे रमण महर्षि, धन्य छे फलाना ऋषि। ये क्या है कि अंतःकरण शुद्ध होता है तो उस अनंत का खजाना तुम्हारे द्वारा काम करने लगता है। यह भी तो सिद्धि है। तो सहन करे विचार पूर्वक, दुर्बल होकर नहीं, कायर होकर नहीं, मजबूर होकर नहीं, लेकिन विवेकी होकर जो सहन करता है, विवेक से सहन करेगा तो फरियाद नहीं होगी, और विवेक बिना सहन करेगा तो फरियाद से ही उसके वर्तमान की स्थिति धुंधली रहेगी। नारायण नारायण नारायण। जब जब दुख आए तब तब सावधान हो जाओ कि दुख कभी तो बाहर के निमित्त से आता है, कभी राज्य व्यवस्था के निमित्त से आता है, राज्य की अव्यवस्था से दुख आता है, कभी प्रकृति के अव्यवस्था से दुख आता है, कभी कभी प्रारब्ध से दुख आता है, लेकिन ये दुख आते जाते हैं। इसमें अगर विवेक तगड़ा है तो ये दुख आएंगे चले जाएंगे और आपकी तपह शक्ति बढ़ जाएगी। अगर विवेक नहीं है तो देने लगोगे राजकारण को गालियां, देने लगोगे भाग्य को गालियां, देने लगोगे संसार आओ छे तेवो छे। भाई मनुष्य जन्म में तुम फरियाद कर रहे हो, लेकिन जब घोड़ा बन जाते तो क्या हाल होता है, चाबुक पर चाबुक सटाकता जाता है, गाड़ी खींचनी पड़ती है, आंखों पे पो बांध दिए जाते खोपे और मुंह में लोहे का लगाम, ऊपर से भास्कर तपता है सूर्य और नीचे से सड़क तपती है, फिर क्या फरियाद। ऐसे तो तुमने 84 लाख जन्मों तक दुख भोगे, मूंगे मुंह भोगना पड़ा, मूंगे मुंह दुख भोग लिया, उसकी अपेक्षा अब समझ से दुख भोग लो तो तप हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप दुख में पड़े रहे, आपकी आंतरिक शक्तियां दबी रहे, आप लाचारी में पड़े रहे, ऐसा शास्त्र का कहने का मतलब नहीं। भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान पौरुष है, वो भगवान का प्रेम, भगवान का आनंद, भगवान की गरिमा, भगवान का पौरुष तुम्हारे अंदर छुपा है। वो तुम अपना पौरुष जगाओ तो तुम चाहो तो दुनिया को हिला सकते हो, तुम चाहो तो परिस्थितियों को बदल सकते हो, और तुम चाहो तो नरक को स्वर्ग बना सकते हो, तुम चाहो तो पापों को पुण्यों में बदल सकते हो, ऐसा तुम्हारे पास ईश्वरीय पौरुष है। लेकिन उतावले होकर वर्तमान के दलदल में गिरने की जरूरत नहीं, फरियाद करके अपने अंतःकरण को मलिन करने की जरूरत नहीं, भविष्य का भय करके आगे गिर जाने की जरूरत नहीं, भूतकाल की याद करके पीछे गिर जाने की जरूरत नहीं, आप ठीक अपने केंद्र पर रहो तो आप हर परिस्थिति को ठीक से उसका उपयोग करके तप बना सकते हो, विजेता हो सकते हो। अनुकूलता तुमको बांधे नहीं और प्रतिकूलता तुम्हें परेशान न करे, ऐसी तुम में समझ खिलनी चाहिए, ऐसी तुम में योग्यता आ जानी चाहिए। अनुकूलता भी आएगी तो इस देह को शरीर को, और प्रतिकूलता भी आएगी इसको, ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली चीजें हैं। अनुकूलता का सदुपयोग कर लो, प्रतिकूलता को तब बना लो, लेकिन तुम न प्रतिकूलता में रुको न अनुकूलता में रुको, तुम तो वो उत्तम भक्त हो जाओ जो कृष्ण चाहते हैं, जो राम चाहते हैं, जो शंकराचार्य चाहते हैं, जो गीता चाहती। तो उत्तम भक्त के ये लक्षण है कि उसकी निगाह केंद्र पर होती है, उसकी निगाह अंतर्यामी परमात्मा के ऊपर होती है। वो मदारी जो है ना, डुग 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 रुपए निकालता है, गुलाब जामुन निकालता है, महाराज क्या क्या दिखाता है। तो नए दर्शकों की निगाह दृश्य पर होती है, लेकिन चतुर आदमी की निगाह मदारी की चालाकी पर होती है। तकदे हैं बाजी नू, बाजीगर नू कोई नहीं तकदा, पंजाबी में कहावत, तकते हैं पाजी नू, पाजीगर नू कोई नहीं तकदा। हम देखते हैं बाजी को, खेल को देखते हैं, लेकिन खिलाड़ी को नहीं देखते। तो ये सारा खेल इंद्रियों का, मन का, सुख का, दुख का, ये सारा खेल जहां से स्फुरित हो रहा है वहां अगर देखने की कला आ जाए तो खेल देखते हुए भी खेल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सिनेमा में खेल देखते हैं तो कई लोग तो वहां जूता उठाते और कई लोग गाली देने लगते और कई लोग आंसू बहाने लगते और कई लोग महाराज रुमाल गीला कर देते हैं आंखों से और नाक से। होता कुछ नहीं, डायरेक्टर के मन की कल्पना ही तो होती है पिक्चर में। क्या होता है? डायरेक्टर के मन की कल्पना। खेल देखो, हंसे के समय हंस लो, रोने के समय जरा चेहरा थोबड़ा चढ़ा लो, लेकिन बाहर निकलो तो खंखेर डालो। ये सिनेमा थी। लेकिन मजे की बात है कि सिनेमा को भी लोग सच्चा समझ के, पैंट भी ऐसी तो शर्ट भी ऐसी, साड़ी भी ऐसी तो फ्राक भी ऐसे, बफ गुलाब भी ऐसे तो आंखों के काजल भी ऐसे। लेकिन कब तक उनकी गुलामी करोगे तुम चित्रों की? चित्र जो चलाता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर की वृत्ति को जो चलाता है वो जगत नेता तुम्हारे साथ है, उसकी मुलाकात कर लो, उसको प्यार कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसको निहार लो। तो जैसे सिनेमा के डायरेक्टर हैं, ऐसे इस जगत का भी डायरेक्टर है मणिराम, और वो वहां से लाता है जहां से तमाम दुनिया को मिलता है, और वो खजाना तुम्हारे पास, तुम्हारा अपना आपा है, दूर नहीं, पराया नहीं, अशक्य नहीं, असंभव नहीं, भविष्य में मिले ऐसा नहीं, भूतकाल में था और अभी नहीं ऐसा भी नहीं। अगर उसको छोड़कर सारी दुनिया का वैभव तुम्हें दे दिया जाए तभी भी सब दुख नहीं मिटेंगे, सारी दुनिया की सत्ता तुम्हें मिल जाए तभी भी सब दुख नहीं मिटेंगे, सारे दुनिया के अति सुंदर से सुंदर व्यक्ति तुम्हारी चाकरी में लग जाए तभी भी सब दुख नहीं मिटेंगे, सारी दुनिया के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति तुम्हारे से कंधा मिलाकर मैं तुम्हारा पक्षमा छू बोलने लग जाए फिर भी सभी दुख नहीं मिटेंगे, मृत्यु का दुख नहीं मिटेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष पराधीनता ये नहीं मिटेगी। जितना दूसरों का बाह्य सहारा लोगे उतनी भीतर से पराधीनता बनी रहेगी, ये थोपी हुई निर्भयता है। मारे तो फलाना नेता साथे परिचय छे, फलाना साहेब साथे परिचय छे, फलाना सेठ साथे परिचय छे, फलाना बेन साथे परिचय छे, कार्यकर्ता छे, फलाना भाई साथे परिचय छे, पण भईला तारो तारी साथे परिचय छे केटले शू? तारो तारी साथे परिचय छे के एटले शू? बस समझी गयो, एटले तू डफोड़ छे, तू कुछ नहीं जानता है, तेरे भाग्य में दुख है, मजूरी है, अपने साथ तू नहीं परिचय किया तो बाहर के परिचयों का गुलाम बना रहेगा, उनको सबको रिझाना पड़ेगा, और जब भाग्य करवट लेगा तो सारे परिचय वाले सारू तमे जाओ हूँ फोन करावी दऊ छू, तमे जाओ हूँ जरा ट्राई करू छू, ऐसा ही करेंगे।